संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार गाथा 194 में चलेगी हम, पेज नंबर है इसमें समय सार अनुशीलन में 146। विगत गाथा में द्रव्य निर्जरा का स्वरूप स्पष्ट किया गया था और अब इस गाथा में भाव निर्जरा का स्वरूप समझाते हैं। भाव निर्जरा का स्वरूप समझाने वाली गाथा इस प्रकार है। दब्बे उभुजन्ति नीमा जायदि सोहम सुख दुख नियम से अब देखो ऐसे भाव ने जरा बता रहे। अपन तो सीधे से चावल समझते हैं ना कि कर्मों का खिन्ना वो द्रव्य निर्जरा है और उन कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उन भावों का समाप्त हो जाना खिल जाना वो भाव निर्जरा है। अब यहां द्रव्य निर्जरा क्या बताई थी कि चेतन अचेतन द्रव्यों के उपभोग के समय जो भी कर्म उदय में आते हैं तो वे नियम से खिर जाते हैं। अज्ञानी के तो वो क्योंकि फिर नए बंधते हैं उस खिरने लाए इसलिए उन्हें हम बंध मानते हैं निजरा नहीं मानते हैं। और ज्ञानी को के वो पुराने बंधे खिर जाते हैं और उनके निमित्त से नए नहीं बंधते। मिथ्या संबंधी बंध की बात है इसलिए हम उसे निजरा कहते हैं। तो वो कर्म खिर गए ना इसलिए द्रव्य निर्जरा उसका नाम दिया। अब ये भाव निर्जरा क्या है वो क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय से जो भी भोग हमारे भोगने में आए माने भोग सामग्री प्राप्त हुई फिर हमें भोगने का भाव हुआ। अब भोगने का भाव तो ये राग रूप भाव है ना राग कहेंगे इसे हम तो द्वेष भी हो सकता है। द्वेष कैसे होगा सोचो प्रतिकूल संयोग आया ना तो उसको भी जो अपन को भोगना पड़ता है ना ऐसा तो हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहीं भोगते हैं नरक में भी तो भोगना पड़ता है ना जैसे अपनी शुद्ध हिंदी में बोलते भोगतना। जब वो दुखरूप भाव होता है तो उसे बोलते भोगतना और सुखरूप भाव होता है उसमें तो उसे बोलते हैं भोगना। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम ये वो मोक्ष वाले सुख की बात नहीं है। ये जो संसार वाले सुख की बात है माने जो दुख का ही भेद है जो संयोगों में और विकारी भावों में अनुकूलता का वेदन उसका नाम सुख है और प्रतिकूलता का वेदन उसका नाम दुख है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो भाव भी हुए ना वो उदय में आने के बाद और भोगने के बाद नियम से खिर जाते हैं माने वो भाव भी नहीं रहते। खाना खाने के बाद खाने का भाव खत्म हो जाता है। कोई भी भोग का भाव हो और उसे भोग के उपभोग के बाद तो समाप्त हो ही जाता है और नहीं हो तो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है नहीं हो वाली यहां बात नहीं है यहां तो हो वाली बात है कि वो सुख दुख लिखाना इसमें सुख दुख नियम से हो सदा परद्रव्य के उपभोग से। परद्रव्य का उपभोग होता है तो उसमें सुख दुख अवश्य होते हैं। जो चार चीजें हैं ये आप ध्यान देना एक राग द्वेष और एक सुख दुख ये बंध अधिकार की गाथाएं आएंगी ना तो उसमें जब वो कहे लोगों के जीवन मरण और सुख दुख वहां भी सुख दुख जोड़े ना एक जीवन मरण और सुख दुख चार चीजें यहां कौन सी चार चीजें हैं कि जो सुख दुख राग देश सुख दुख, क्योंकि सारा निर्भर तो सुख दुख पे ही है ना। हम राग किसी चीज से घृणा करते हैं तो दुख का कारण मानते हैं, तो और सुख का कारण मानते हैं तो उससे राग करते हैं। तो कहते हैं कि अब्बू जी ने राग द्वेष भी बात तो राग द्वेष की भी है, लेकिन सुख दुख को मुख्य करके बात कही। वो ये कहते हैं कि वो जो भोगने का भाव हुआ ना, तो वो भोगने के बाद वो खिर जाता है, मैंने वो नियम से नष्ट हो जाता है। वो याद रखो, समय सार की 72 से 74 तक गाथा के बीच में उदाहरण आता है ना, वीर मोक्षण बद काम दारुण कान संस्कार गारंटी से नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है माने खिर गया, वो भाव खिर गया ना, समझ गया। तो देख कहते हैं कि सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से, और भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हूं। अब भोगने के बाद नहीं भोगने वाली साधनों के अनुष्ठान के ऊपर तो नहीं भोगने वाली बात है, उनके भी इष्ट अनिष्ट संयोग तो प्राप्त होते हैं ना, लेकिन वे नहीं भोगते हैं और तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, वही भोगते हैं तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ये कहने का भोगने की बात है, चौथे गुणस्थान वालों को पकड़ के बात कर रहे हैं। वो तो उन्होंने वीतराग समय ऋषियों की बात कहकर के जैसे नाचार्य ने एक दफे सोलह समय लोग हमको उस लेन से थोड़ा चिगा दिया, और हम उससे अब मैं हानि तो नहीं कह सकता हूं क्या हानि हुई, उन्होंने तो अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात खड़ी हो गई कि ये जो अर्थ किया जा रहा है ना भावकर्म के संदर्भ में, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, समझिए ना। मैंने ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं इस बात को हमारे गले उतारते हम झकमार के, क्यों उतारते कि शास्त्र में लिखी है, कुंद कुंद ने लिखी, अमृतचंद्र ने लिखी, तो हमें अब वो उसके विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, तो किसी तरीके से हमें युक्ति से आगम से अपनी श्रद्धा में बैठाना पड़ता, क्या समझे ना। अब हम एक दूसरा रास्ता भी दिखने लग गया, अब राकेश चला गया, उसको है ये बीमारी, तो वो दूसरा रास्ता निकाला है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप है हिन्दुस्तान में जिसने ये दूसरा रास्ता निकाला है, और वो यही कहते हैं क्या कि ये तो वीतराग समय ऋषियों की बात है, ये तो सातवें गुणस्थान के ऊपर की बात है, जबकि बिल्कुल नहीं है ये बिल्कुल भोगने के बाद लिखा ना मूल गाथा में देखो, अर भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हूं। आपको लगता होगा ये तो हिंदी में आपने लिख दिया है, लेकिन आप प्राकृत में देखो, आप तो विद्वान लोग हो ना, कि तमस दुखम उदिन्नम बेददी अघनिज्जरम जादी, वे सुख दुख उदय में आकर वेदने में आते हैं और वे फिर निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी का अनुवाद है, इतनी सरल भाषा में आपको रख दिया, तो आपको सीधा उससे नहीं निकाल सकते, ऐसा लगता है उसमें कुछ और होगा, इन्हें कुछ नमक मिर्च लगाया होगा, क्या करें। तो उसमें दो ही बातें हैं, या तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस भाषा को कितनी मास्टरी प्राप्त कर लें, या फिर आप उससे सीधा समझ लें, तो फिर आपको किसी हिंदी वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझ सकते हैं तो जरूरत तो पड़ेगी। देखो आप 5 साल पढ़ के संस्कृत मीडियम से पेपर देके पास होने के बाद भी ये बहुत गहराई से अनुभव करेंगे कि हम पूरी तरह से संस्कृत से नहीं समझ सकते, यानी आपको उसका अर्थ नीचे जो उपलब्ध होगी टीका उसमें देखने का भाव अवश्य आएगा, अपनी विद्वता के उसमें ये कोशिश नहीं करना कि नहीं हम तो देखेंगे ही नहीं। जैसा मैंने कल धर्मेंद्र की बताई थी कि उसने कहा हम देखेंगे, हम तो विद्वान हो गए ना, हम तो आत्म शादी सीधी पढ़ेंगे, हमें भी आज वो सामर्थ्य नहीं है, समझ लो क्या कि हम कहें कि हमें अब देखने की जरूरत नहीं है, समझे ना। इतने दिनों बाद मैंने पढ़ रहे पढ़ा रहे लग रहे एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोगों की एक शिकायत आपको मिलेगी, आज से 10-5 साल पहले तो बहुत ज्यादा मिलती थी, आज थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो ये कहेंगे कि देखो आज की पढ़ाई बिल्कुल रद्द हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई। पुराने जमाने का एक मैट्रिक देखो, उसको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है और जो भी गणित आता है, ये आज के मैट्रिक वालों को देखो, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये 10 साल पहले बहुत शिकायत थी, अब आज तो बहुत बच्चे प्रतिभाशाली हो गए और बुजुर्ग पानी भरने लग गए उनके सामने, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी छुट्टी कर रही कि तुम जाओ, तुमसे हमारा काम नहीं चलेगा, अब तो हमको ये बच्चे चाहिए क्या। लेकिन 10 साल पहले बहुत ज्यादा थी, और इसका मुझे बहुत सामना करना पड़ा, तो मैं उनसे कहता था आप बहुत धोखे में हो। मैं उस वक्त ये बात सिद्ध करता था कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा उनको ज्ञान है। क्यों? कहते भाई एक बुढ़े के सामने बैठा दो, वो नहीं लिख पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये पुराने वकील भी सब ऐसा कहते हैं, इनको एक एप्लीकेशन लिखना तो आती है, नए नए आते हैं तो LLB LLM करके आते हैं, कुछ नहीं आता। पुराने डॉक्टर भी नए डॉक्टरों के बारे में कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकी छुट्टी हो रही। क्या मैं क्या कहता था वो सुनो, आप कहते हैं पुराना वाला ये मैट्रिक है और ये नए वाला मैट्रिक है। अरे भाई साहब, वो पुराने वाला और नए वाला नहीं है, वो पुराने वाले के साथ में 40 वर्ष का एक्सपीरियंस और जुड़ गया है, प्लस है वो, समझ में आया ना, वो प्लस है उतना। जब ये उस उम्र पे पहुंचेगा तब इसको देखना, अथवा जब ये वो इस उम्र का था तब लाओ उसकी योग्यता, तो हम बता तब मिलान तो तब होगा। हम इतने मोटी बात नहीं समझते हैं कि हम किसका किससे मिलान कर रहे हैं। एक व्यक्ति मैट्रिक है और 40 साल का अनुभव प्लस है, वो है वो। दूसरा अकेला मैट्रिक है, अनुभव अभी एक दिन का नहीं है। वो जैसी गलती अपन ने पश्चाताप में बताई कि धोबन और सीता जी, काहे के धोबन से सीता जी की तुलना करते हो, तो धोबन कौन सी धोबन है कि जो अपनी मर्जी से जाकर किसी दूसरे के घर में 6 महीना रह के आई, वो ऐसी धोबन पकड़ना कि उसे भी सीता जी से जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया था, कैसी धोबन लेना, बोलो किसी ने सोची आज तक? पश्चाताप भी 25 दफे सुन लिया होगा लेकिन नहीं आता समझ में। उदाहरण तो सही तब बैठ है कि जैसी सीता की पोजीशन थी वैसी धोबन की होनी चाहिए। अब जो हम देखते हैं कथन में, तो धोबन को तो वो अपनी मर्जी से भग गई थी और दूसरे घर रह के आई, और कि सीता जी भी रही थी रावण के घर और मैं भी रहूंगी, दोनों में फर्क है ना। तो मैंने क्या किया वहां, मैंने ये लिखा कि वो धोबन को भी जबरदस्ती ले जाया गया ऐसा मानना पड़ेगा, कि कहां लिखी से मतलब नहीं है, तब सीता से तुलना हो सकती है। यदि वो नहीं गई तो फिर सीता से तुलना ही नहीं हो सकती है। तो सीता से तुलना करी रामचंद्र जी ने, ये सही नहीं था। यदि वो अपने आप भाग के गई थी तो, अब मैंने एक पंक्ति लिखी उसमें, गद्य में लिखी, पद्य में तो नहीं, कमेंट्री है ना, कि इतनी छोटी सी बात इतने बड़े न्यायाधीश की समझ में नहीं आई, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। एक कमेंट समझ में है ना, क्या समझ गए ना, ऐसे ये तर्क है कि ऐसी आलोचना करने वालों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि वो 40 वर्ष प्लस है, मैट्रिक तो वो 5 साल में हुआ होगा, 10 साल में हुआ होगा, बोले ये तो उसे चौगुना स्टडी हो गई इसकी, उन दोनों की तुलना कैसे हो सकती है। क्या बड़े मेंढक को हाथी का बच्चा की तुलना की जा सकती है? हाथी का बच्चा और बड़ा मेंढक, अरे मेंढक वो बड़ा है, हाथी का बच्चा छोटा है। मेंढक की मेंढक से तुलना होगी और हाथी के बच्चे की हाथी से तुलना होगी। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे हम थोड़े से टिक जाते हैं, जो सार्वपना समय तंत्र में थी वो सार्वनिश्चित निश्चित रूप से जयसवन में नहीं थी। बहुत अध्यात्म की रुचि वाले थे, पक्के थे, सम्य दृष्टि थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, कोई शक नहीं था, छठ में साथ में हिन्दुस्तान की भूमिका में झूलने वाले थे, है ना। फिर भी जो बौद्धिक सार्पनेस की बात है मैं उसकी बात कहता हूं। अभी हम तो एक बात समझाना चाहते हैं कि भोग के काल में भी निद्रा होती है। अब तुमने वो स्थान पकड़ लिया कि जब भोग का काल भोग ही नहीं है तो भोग की निद्रा कैसे होती है, यानी वो उदाहरण सही नहीं बैठा ना, तो उन्हें दे दिया, दे दिया, लेकिन वे बैठा कहां पाए। आखिरकार वो मुख्य रूप से भोग लेना और गौण रूप से ये लेना, आखिरकार इसे लेना पड़ा ना। एक बार नए चक्र में भी इसी तरह की है। नए चक्र आप पढ़ते होंगे, उस पर आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, और आपको पढ़ाने वाले अध्यापक ने कितना ध्यान दिलाया मुझे पता नहीं है। पंचाध्यायी के नियमों का विवेचन है, तो पंचाध्यायी के नियमों के प्रकरण में वो कहते हैं कि हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद और रुपया पैसा और शरीर को अपना कहने वाले व्यवहार नए को नए नहीं मानते। ये तो नया भास है कि परद्रव्य से संयोग को नए कहना ये बिल्कुल उन्हें स्वीकार नहीं है, उनके गले नहीं उतरती। तो उन्होंने क्या किया, भाई चार प्रकार के निश्चय, दो प्रकार के, चारों प्रकार के व्यवहार नए राग से ऊपर ही घटा दिया। यहां बुद्धि दो टुकड़े कर दिए, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग। बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना ये उपचय तो सद्भुत व्यवहार न है, और अबुद्धिपूर्वक राग को कहना ये अनुपचय तो सद्भुत व्यवहार न है, और फिर वो गुण भेद वाले को वहां घटित करके और उन्होंने वहीं से काम निपटा दिया। अब फिर एक समस्या आई, ये लिखा है मेरे नए चक्र में कि भाई अभी इस व्यवहार का क्या करेंगे, जे स्त्री मेरी पुत्र मेरा, इसकी तो बहुत उपयोगिता है, इसके बिना तो अनुवृत महावृत नहीं बनेंगे, तो स्वस्थी परस्थिति का भेद नहीं रहेगा तो अनुवृत महावृत कैसे बनेंगे। तो वहां पर भी उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया, किन्ने पांडे राजमल जी ने, जो पंचाध्यायी ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वहां से नया भाष से काम चला लेंगे। तो फिर क्या बात कह रही है, आखिर उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चला ना, जब काम चलाओगे तो फिर नया ही स्वीकार कर लो ना। मैंने वो अपनी बात को तर्क से गले उतार नहीं पाए, तो मैंने उसके लिए एक उदाहरण दिया है, वो भी सुन लो, तुम विद्वान लोग बनने वाले हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से सोचना, मैंने पहले नहीं बताई होगी तो तुम जरा, नहीं बता दी होगी तो बढ़िया ही बात है। जैनी कौन कौन से काम कर सकता है, जैनियों को कौन कौन से काम करना चाहिए, सब उपदेश देते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये जैनी का काम नहीं है, ये जैनी को नहीं करना चाहिए, ये जैनी को नहीं करना चाहिए, आते हैं ना सब, पुलिस में जैनी को नहीं जाना चाहिए, सेना में जैनी को नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं झाड़ू लगाना चाहिए जैनी को कि नहीं, लेटरिन साफ करना चाहिए कि नहीं जैनी को, क्यों आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है उधर, और यदि कलेक्टर को मिले 25,000 और उनको देने लगे 1,00,000 रुपये महीना, तो सारे कलेक्टर इस्तीफा देकर उस धंधे में चले जाएंगे। पैसे से होता है उसका हिसाब किताब, तो करना चाहिए नहीं। ये बाल बनाने का काम, नाई का काम करना चाहिए जैनियों को कि नहीं, धोबी का काम करना चाहिए कि नहीं, देखो सब गिनना है कि नहीं, क्यों क्यों। और बिल्कुल भैया जैनी के करने योग्य काम नहीं, सब मिलेंगे ऊपर से नीचे। अब मैं दूसरा प्रश्न है मैं कि ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें सब जैनी जैनी हो, आप चाहते हो कि ऐसा देश हो, भगवान ऋषभ देव के समय ऐसा देश था ना, अपन ही बोलते हैं क्या नहीं, एक ही धर्म था, और जहां गीत में था तो नहीं है, विदेश क्षेत्र में वहां एक ही धर्म है, श्रीमंदर परमात्मा बिराज रहे कि नहीं बिराज रहे, क्यों वहां सब जैनी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं کہ وہاں پھر کیسے چلتا ہوگا دیش کیسے چلے گا, وہاں صفائی نہیں ہوتی ہوگی, وہاں کسی کے بال نہیں بنتے ہوں گے, وہاں کپڑے نہیں دھلتے ہوں گے, سب گندے کپڑے پہنتے ہوں گے, سب داڑھی رکھتے ہوں گے, کیوں سب بہت گندگی رہتی ہوگی دیش میں. بولو آپ, اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے ہو کہ سارا دیش جینی ہو جائے. اب ایک گاؤں پورا جینیوں کا ہو جائے اور اس میں ایک بھی اجینی نہیں ہو تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ سے بتاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں, پورا دیش تو نہیں بنا سکتے, ایک گاؤں تو ہو ہی سکتا ہے نا. ابھی بھی ابھی اپن ایسا کرتے ہیں نا کہ ایک ایک کالونی کاٹ دیتے ہیں, ایک بڑی بڑی بلڈنگ بنا دیتے ہیں جس میں 10,000 آدمی رہتے ہیں ایک بلڈنگ میں, اور ہم جینی کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے, اور جے پور جیسی بمبئی جیسی جگہ میں سب جینی خرید لیں. ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں صفائی ہوگی کہ نہیں, ان کے لوگوں کے بال بنیں گے کہ نہیں, کپڑے دھلیں گے کہ نہیں, کیا بازار سے لے آئیں گے بہت دھوبیوں کو لے آئیں گے؟ ارے بھائی صاحب, جب دوسروں کو گھسا لو گے تو جینیوں کا گاؤں کہاں رہا؟ بتا جینی کریں وہ کام, پتا دوسرے آ جائیں تو پورا گاؤں تو جینیوں کا نہیں رہا نا. دو باتوں میں سے ایک بات سنو, بولو کیا کیا اشت ہے؟ سنیں گے تو کیا آپ کیا صلاح دینا چاہتے ہیں؟ پھر جینیوں کو یہ سب کام کرنا چاہیے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں اور کیسے کہا, یہ تو پرمان ہے, یہ سب بن رہے ہیں, آپ بدل نہیں سکتے اب. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جینیوں کا دیش ہوگا اور سب جینی ہوں گے تو وہ سب کام اس میں ہوتے ہوں گے اور جینی ہی کرتے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیش تو چلے گا سب کاموں سے, اس میں سینا بھی چاہیے, پولیس بھی چاہیے, صفائی کرمچاری بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, سب چاہیے, لیکن ہمیں تو ان سب کاموں میں سے ہم تھوڑی سب کریں گے. ہم مانے ایک ویکتیگت کہ ہم اپنے بچے کو کون سے دھندے میں ڈالیں؟ کیوں تو ہم تو کہیں گے کہ ہم تو اچھے ڈاکٹر ہی بنائیں گے کہ انجینئر بنائیں گے کہ یہ کریں گے, جو بھی آپ کا ہے. میں کہوں پھر تم نے وہی ہنسک چنا. ہم کہ تم اپنے بچوں کو اہنسک کام میں لگاؤ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو پھر منائی کی دکان کھول کے بیٹھنا پڑے گا. اتنا یوگ ہوگا, یوگتا سے کوئی اچھا کام نہیں کر سکے گا تو کیا کرو گے؟ کرنا ہی پڑے گا نا, میرا مطلب سمجھے گا نا. یعنی یہ پردھان منتری کی ڈیوٹی ہے کہ دیش میں سب لوگ چاہیے, اس لیے سب لوگوں کو پروتساہت کرے. لیکن پردھان منتری کا بیٹا ہے تو وہ تو سب کام نہیں کرے گا نا, تو اسے ان میں سے ایک چننا ہے, تو وہ ان میں ایک ایک کام چنے گا, وہ اپنے اور حساب سے چنے گا, پیسہ کس میں زیادہ ملیں گے, محنت کم کرنی پڑے گی. ہم جینیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اہنسا کے آدھار پر چنو, جس میں ہنسا نہ ہو وہ کام کرو, اہنسا کام کرو, بس ختم ہے. تو آپ کو چننے کا ادھیکار ختم نہیں ہوا, اس سے نہیں ہوتا ہے, گھبرانا نہیں. لیکن یہ وستو سروپ تو یہ ہے نا کہ پرتیک پرانی, پرتیک منش, جب پشو کو بھی ہو سکتا ہے اور نارکی کو بھی ہو سکتا ہے سمیہ درشن, تو کوئی بھی کام سمیہ درشن میں بادھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ادھ شبدے بھگوان کے سمے میں نہیں تھے؟ میں پوچھا چکرورتی بھرت کی جو سینا تھی سب جینی تھے اس میں؟ ہاں ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. تو وہ سب سینک کا کام, ملٹری میں کا کام کر رہے تھے نا, تو آپ کیسے کہتے تو ملٹری میں نہیں جانا چاہیے جینی کو؟ گھبرانا نہیں, پوری بات سننا. پھر صاحب وہ تو کوئی جنتا جنتا نہیں تھی, انہوں نے اپنے بیٹوں کو ملٹری میں بھرتی کیا تھا, ارگ کیرتی جاتا تھا لڑنے, بھرت چکربتی خود لڑنے گئے تھے, خود تھے اس کام میں, باہو بلی خود گئے تھے, مانے وہ سینا میں خود بھرتی تھے. سیناپتی ہو جب کچھ بھی ہو, اور سبھی تھوڑی سیناپتی ہو جائیں گے, جب ہزار ان کے پریوار والے جائیں گے تو ایک سیناپتی ہو جائے گا, ایک راجا ہو جائے گا, پھر 998 کیا کریں گے؟ گریجویشن تو ہو گئی نا, کیوں تھے نا سب, جس کو تم سب سے برا کام مان رہے ہو, तो फिर क्या करें, हम सबको सैनिकों में भर्ती होने दे, किसने कहा? अरे तुम तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक कपड़े की दुकान खोलो, ओके, बच्चों को पढ़ाने का काम करो, वो भी आत्मख्याति पढ़ाने का काम करो, हम क्यों कहेंगे तुम बेवकूफ वहां जाओ? समझिए ना, जिसमें बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव हो, बात पढ़ाने का हो, सब करने का हो, हम ऐसा क्यों काम चुनेंगे? यानी सब काम देश, यदि तुम राजा बनोगे तो सब कामों को तुम्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और यदि तुम अपने घर के हिसाब से चुनाव करोगे तो लाखों कामों में से एक चुनना है, तो अहिंसा की दृष्टिकोण से उसे चुनना चाहिए। ये अंतर समझ गया, चिंतन। ऐसे सब्जेक्ट क्यों नहीं रखते हो तुम अपनी इसमें? आने दो तर्क ढंग से, सोचने की क्षमता इनमें पनपने दो। तो अभी क्या कह रहे हैं, निज राग सुख दुख। अब चार चीजें हो गई, कौन कौन सी चार? राग देश और सुख दुख। अब यहां उन्होंने सुख दुख को मुख्य कर दिया, राग देश की अपेक्षा। वे कहते हैं कि सुख दुख और राग देश ये सब भाव है, भाव बंध हैं, भाव संबर हैं, ये भाव आश्रम हैं, भाव बंध हैं। तो ये भोगने के बाद ये निर्जरा को प्राप्त हों, ये निर्जर जाते हैं, फिर खड़े नहीं रह सकते। कहते हैं उदय आया, एक समय को ये खड़े हुए, अगले समय में वैसा उदय आएगा तो ये खड़े रह पाएंगे, अगले समय में वैसा उदय नहीं आया तो ये खड़े नहीं रह पाएंगे। और भोगने के बाद निर्जरा को प्राप्त हो, तो इससे एक बात सिद्ध हो गई ना, ये भोगने वाले की बात है, नहीं भोगने वाले की बात नहीं है, ये भोगों के त्यागी की बात नहीं है, समझे ना। अब मैंने यहां से गया था कि जैसे इन्हें वीतरागी संबंध स्थिति कह के और ऊपर को ले गए, लेकिन कहां ले जा पाए? हमारे दिमाग में एक और ये खड़ा कर दिया कि एक वो भी रास्ता, एक वो भी हो सकता है, मुख्य तो वो है और ये तो गौण है। मैं क्या कहना चाहता हूं उसका भाव आप समझे होंगे, इशारे में ही समझना पड़ेगा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके सामने अपन क्या बोले। लेकिन अपन को भी सोचने का तो अधिकार है ना ताराचंद जी के, नहीं है? हम जब मौलाना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम बहुत अच्छे उद्दंड लड़कों में से थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितनी उद्दंडता हम में थी। कि जब पंडित जी हमारे कोई नियम लाते थे सामने, तो एक छपी छपाई नियमावली थी विद्यालय की, तो हम वो अपने पास रखते थे, तो हम उनसे कहते थे इसमें ये नहीं लिखा, ये बात आप लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस नियमावली में ये बात नहीं लिखी है, कानून की किताब। तो वो गुस्से में झंडा का कहते थे कई दफे, हमको यहां टेसू बना के बैठा दिया है। अब उसने टेसू जानते हो क्या होता है? ये जो दीपावली में दीपक वीपक जलाते हैं और वो ऐसा कुछ जैसे बनाते हैं कुछ, वो ऊपर आदमी का चेहरा बना देते हैं और उसमें कुछ दीपक जलाते करते, ऐसा कुछ होता है, एक चीज होती है। अथवा वो जो खेत में बिजू का खड़ा करते हैं ना, समझ गए ना। तो हम क्या ऐसे हैं यहां कि हम कोई नहीं, यानी ये नियमावली है और इसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं, और वो परिवर्तन का हम ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, ये आर्डर भी रोजाना नए नए निकलते हैं, ख्याल में ही ना। संविधान बना गया अम्बेडकर, लेकिन कितनी दफे हो गया उसमें संशोधन, और संशोधन का अधिकार संविधान में ही दिया हुआ है, वो संशोधन होते रहेंगे, और संशोधन नहीं होंगे तो भी प्रधानमंत्री अपने निकालते रहेंगे ऑर्डिनेंस, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी तो उन्हें बाद में लोकसभा में पास करानी पड़ेगी, पहले तो अध्यादेश निकाल ही देंगे, क्योंकि वो संविधान के दायरे में किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो समझ गए ना। तो वो ये हमको समझाते थे क्या, तब हमारी ये समझ में आई कि वो नियमावली के बाहर भी एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कानून बना सकता है और वो उसे उचित करके उसे लागू कर सकता है, वो हमें आज तक याद है कौन सा, कि हमें यहां टेसू बना के नहीं बैठाया है, आप सब लोग टेसू बन के बैठे हो, माने जो लिखा है शास्त्रों में वो तो संविधान है अपना, लेकिन हमको भी सोचने का अधिकार तो है, हम टेसु नहीं है। कैसे उसे पढ़ पढ़ के बैसे 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 करते जाना, उसका नाम हम ऐसे नहीं है। टेसु का मतलब ये है कि भाई देख, हम यहां तो ये कह दिया, आपने ऐसा कह दिया, काली मक्खी की जगह मक्खी मार जाना, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला ना उनने की कोशिश तो क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। हम तो ये समझाने बैठे हैं, कौन सा क्या समझाने बैठे हैं कि सुख दुख भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो, समझे ना। अब वो पिछली गाथा की बात थी, तो जब अगली गाथा ये आने वाली थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना, दादा ख्याल में है ना आपके। तो ज्ञान मंत्र के भोग निर्जरा हेतु ये बात आने वाली है। अब जो भोग से रहत वाले को पहले ले गए उस उदाहरण को, उससे क्या उपलब्धि सिद्ध होगी। जो हम समझाना चाहते हैं वो तो समझ में आएगा ही नहीं ना। हमारी समझ में ये आना चाहिए कि भोग करने की क्रिया विद्यमान रहेगी तो भी ब्रह्मिक दृष्टि के निर्जरा है। अब बगैर भाव खिर गया ना, इसे वो भाव निर्जरा भी हो गई। यानी वो कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जीव के द्रव्य निर्जरा भी है और भाव निर्जरा भी है। सब और कब, भोगने के काल में भी, भोगने में युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि वो देश का भोगना है, समझे। अगर भोगने का मतलब हमने एक चीज से जोड़ रखा है, पांच इंद्रियों के भोग तो हैं ही, कसाओं का देश का भी नाम भोग नहीं है, भोगतना है, समझे ना। वो भोगने का बहुत बड़ा फलक है, हमने एक क्रिया से जोड़ दिया उसे, एक एक इंद्रिय की क्रिया से ये बात नहीं है, है? भोगने के भाव गारंटी से अगले समय निर्जरा को प्राप्त होते हैं, इसलिए वे असरण हैं। वो असरण जो वाला बोल है ना, वो बात है। देखो आत्मख्याति में इस गाथा का भाव क्या लिखा है जो पढ़ते हैं अपन। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव के सुख दुख रूप भाव नियम से ही उदित होता है। अब इसमें फिर समझाएंगे, नियम से उदित होता है लेकिन उसके कारण नहीं, स्वयं की पर्यायगत योग्यता के कारण, ऐसा भी आएगा एक समझ में। क्यों, हमने जब उससे जोड़ा ना उदय से, तो हम समझने लगे कि पुद्गल जीव का कर्ता हो गया। वो तो अविनाभावी नियम है, ये बताया है। दोनों एक साथ होते हैं, उनमें कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ना, समकाल जोड़ना, और समकाल के साथ में भी अन्वय व्यतिरेक घटित हो जाते हैं। ये समझना, जो न्याय शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक पड़े होंगे ना, तो अपन क्या समझते हैं कि वो उसके कर्ता कर्म होगा तो ही अन्वय व्यतिरेक होंगे। कर्ता कर्म के लिए अन्वय व्यतिरेक नहीं, व्यापक व्यापक जरूरत है। अन्वय व्यतिरेक तो परद्रव्य के साथ भी घटित हो जाते हैं। कैसे हो जाएगा घटित, सूरज का उगना, कमल का खिलना, मुर्गे का बोलना। अब इसका कोई कारणकारी संबंध नहीं है, ख्याल में है ना, लेकिन वो निमित्त निमित्त संबंध ऐसा होता है नियम से, तो समकाल होने से हमारे न्याय शास्त्र में बहुत काम आ जाता है, क्योंकि हमको ज्ञापक हेतु है ना। देखो, सूरज का उगता है तब मुर्गा बोलता है। अब अपन भाषा कैसी लगती है, सूरज का उगना है कारण और मुर्गे का बोलना है कार्य। सूरज का उगना है कारण और कमल का खिलना है कार्य, यही होगा। अब पलट जाएगा मामला, आप अपने घर में सो रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है, घोर अंधेरा है, खिड़कियां विड़कियां सब बंद हैं, सर्दी के दिन हैं, तो मुर्गा बोला, तो वो आवाज आपके कान में पड़ी, तो आप ये निर्णय करते हैं सूरज उग गया, तो अब कारण कौन हो गया, मुर्गा का बोलना कारण हो गया और सूरज का उगना कार्य हो गया, बदल गया मामला, समझ गए आप। उसमें कमल खिला, क्यों जी, उस समय बहुत बादल हों सुबह, तो फिर कमल फिर 9 बजे बाद 10 बजे जब सूरज उगेगा तब खिलेगा, क्या वो खिल जाता होगा, क्यों। तो कमल का खिला हुआ देख करके भी हम समझ लेंगे कि आकाश में सूर्य उग गया। माने जिनको रात्रि भोजन त्याग है, अभी सुबह खिले हुए कमल को देखकर और मुर्गे की आवाज सुनकर चाय ले सकते हैं, वो सूरज को देखना जरूरी नहीं है। क्यों? तो सूरज तो बादलों में छिपा हो सकता है ना, हो सकता क्या नहीं? तो अभी कारण कार्य किसको माने? सूरज को कारण बनाया था अपन ने, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ये छोटे छोटे थे, इन्हें कार्य बना दिया था। ज्ञान की दृष्टि से मामला उलट हो गया, क्योंकि हमें ये चीज जानने में आती है और वो हम उसका अनुमान करते हैं। तो कारण कार्य संबंध नहीं है, बस एक ज्ञापक हेतु है, वो कारक हेतु, समझिए ना, ज्ञान कराने के लिए है, इसलिए इससे वो हुआ ये सिद्ध नहीं होता। समकाल है दोनों का, बस खत्म। तो समकाल में अनुमय व्यतिरेक घटित हो जाता है, ये न्याय शास्त्र का अनुमय व्यतिरेक है। देखो, पर द्रव्य को भोगने आने पर नियम उसके निमित्त से है, वो निमित्त है, उपादान तो नहीं है। जीव के सुख दुख रूप परिणाम नियम से उदित होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो विकल्पों का अतिक्रमण नहीं करता। देखो, ये न्याय शास्त्र लगा दिया ये हेतु, क्यों होगा? वे जरूरी थोड़ी है, कहे जरूरी, क्योंकि तुमका वेदन हुआ और साता साता का नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। वो तो गारंटी से साता साता का हो गई। देखो देखो, एक है विद धातु, विद धातु समझते हैं, काय के अर्थ में है, विद ज्ञाने, विद धातु ज्ञान जानने के अर्थ में है, लेकिन ज्ञा धातु और विद धातु में फर्क क्या है? ज्ञा माने प्योर जानना है और वेदन माने जानना नहीं, उसके साथ में सुख दुख भी होंगे, वो अनुभव वेदन है, इसलिए अनुभव वेदन ससंवेदन है ना। वो अनुभव को ज्ञान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ससंवेदन। वो आनंद की कड़का नहीं जगे तो अनुभव नहीं माना जाता है ना, नाम क्यों है? जान लिया ये जुदा, ये जुदा जुदा, ऐसा नहीं करता। तो वो कहते हैं कि तुम वेदे वेदे, यदि उदय को वेदा माने भोगा तो वो नियम से होगा, जो क्या लिखा उनको, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो विकल्पों का अतिक्रमण नहीं करता। कौन नहीं करता अतिक्रमण? वेदन। जानना तो कर सकता है, समझे ना। उक्त सुखरूप या दुखरूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादिक के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निद्रा को प्राप्त होता हुआ, वो निद्रा को प्राप्त उसका भी हो जाता है, वो जो उदय में आया कर्म फिर वो खड़ा नहीं रहता है, हुआ भी वस्तुता निर्जरत न होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता, उसको हम निद्रा नहीं कहते हैं, क्योंकि आगे भी बंध गया ना वो। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना मात्र निर्जरित होने से वस्तुतः निर्जरित होता हुआ निर्जरित ही होता है। इसलिए ज्ञानी के निद्रा और अज्ञानी के बंध, आप समझ ना कितना स्पष्ट है, ये सब आत्मख्याति का है। अब आत्मख्याति में मूल में भी पढ़ना तुम, और यदि उसमें निकल जाए तो इससे बढ़िया बहुत अच्छा है कि तुम एक टीका तुम लिखने लगना कि किसी ग्रंथ की, और नहीं निकले और इसे पढ़ना पड़े तो समझना कि अभी पहले और तैयारी करो, समझ गया ना। इस गाथा और टीका में यह कहा जा रहा है कि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, अब ये कहना चाहते हैं फिर वीतरागी काय बुला रहे हैं, समझ गया ना, दोनों के ही परद्रव्य भोगने में आने पर, अब देखो परद्रव्य को भोग नहीं सकता लेकिन जिस नए से भोगता कहा है उसको पकड़ना है। सुख दुख रूप भाव तो होते ही हैं, क्योंकि इनके बिना वेदन संभव ही नहीं है, जो अपन ने उसका और सरल किया। किंतु भोग और वेदन समान होने पर भी सम्यक दृष्टि के निद्रा होती है और मिथ्या दृष्टि के बंध, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या तो अनंतानबंदी संबंधी राग देश विद्यमान होने से वे भोग और वेदन बंद करके निर्जरित होते हैं। क्या इस कारण उन्हें बंद ही है और सम्य दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानबंदी राग देश के अभाव से वे भोग और वेदन बिना बंध किए ही निर्जरित हो जाते हैं, अतः उसके ही हैं। इस प्रकार भोग और वेदन समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि के बंध और सम्य दृष्टि के निजरा होती है। मेन मुद्दा तो यही चल रहा है ना। अब सोचो आप दादा कि वो इसमें वो जो बीतरा की समस्या में मुद्दा उठाया था वो हेल्प कर रहा है कि थोड़ा सा हमारे को और विचलित कर रहा है, है? समझ में। अब ये बात गुरुदेव ने कही होगी, समझाई होगी कहीं, तो वे कहते आप जयसेन को नहीं मानते, आप जयसेन को नहीं मानते, जयसेन अरे नहीं मानते हो तो कोर्ट काय को करते। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के स्पष्टीकरण में आत्मख्याति का अनुसरण करते हुए भी यह जोड़ देते हैं कि सम्य दृष्टि भोगों को भोगते हुए भी उनमें हे बुद्धि रखता है और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि रखता है। मैंने आखिरकार उसी को सिद्ध किया ना उनने, भोग के काल में उद्यागत कर्म तो दोनों के ही खिरते हैं देखो, किंतु हे बुद्धिपूर्वक भोगने के कारण सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त नहीं होता और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि पूर्वक भोगने के कारण बंध को प्राप्त होता है। बंध को प्राप्त न होने से सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण कहे गए हैं, किंतु आगामी बंध के कारण होने से कारण मिथ्या दृष्टि के भोगों को के खिरने के बावजूद भी बंध के ही कारण कहे गए हैं। बहुत स्पष्ट है ना, पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हें मालूम रहे कि द्वारा भी घर पर जाके पढ़ सकते हैं आप, है ना। उपादेय बुद्धि और हे बुद्धि का फिर इसका क्या मतलब है, उपादेय बुद्धि से और हे बुद्धि से। अब भरत चक्रवर्ती भोग रहे थे, हे बुद्धि से भोग रहे थे कि उपादेय बुद्धि से, अब कैसे पता चले तुम लड़ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करे तो उसे मारने को तैयार हैं, क्यों? देखो तुम अपने जितने भी जयंत पुराण पढ़ना, उन पुराणों में 100 में एक जगह ये ऐसा आया होगा कि कोई राजा ने और ये प्रस्ताव किया किसी को कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ आपके बेटे के साथ करना चाहती हूं, इसमें 100 में एक मिलेगा और 100 में 99 क्या मिलेंगे कि वो राजा ही अपना प्रस्ताव लेके गया है कि मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूं और तुम चुपचाप मेरे को शादी कर दे और नहीं करेगा तो लड़ने को तैयार हो जाए, सीधी सी अल्टीमेटम के साथ, मैंने शादी तो मैं करूंगा और कहूंगा खत्म, ऐसे 99% मिलेंगे पढ़ना तुम। ये तो जमाना अच्छा आ गया तुम्हारा थोड़ा बहुत, सबको लड़कियां मांगनी पड़ती थी चक्रवर्तियों को तीर्थंकरों को भी, क्या लड़की वाले तो इसलिए परेशान थे कि मांगने वाला कोई नहीं है, नहीं जो मांग लेगा फिर उसे बचे कैसे, कोई ताकतवर ने मांग ली तो बचना क्यों चाहती, वो तो बड़ा राजा है होशियार है ताकतवर है, अब वो आ गया, आप जानते हैं रावण की उम्र क्या थी और राम की क्या थी, राम के बाप भी जब पैदा नहीं हुए थे जब से रावण राजा था आदि चक्रवर्ती, राम नहीं राम के पिताजी भी समझ गया ना, पढ़ना जब पद्म पुराण बहुत बाद में पैदा हुए हैं वे 3-3 पीढ़ी, अब वो ही रावण सीता को चाहता था, वो मैं शादी करूं मैं सीता से, बोलो तो जनक कैसे कर रहे उस बुढ़े से, आदि चक्रवर्ती सम्राट और राम के पिताजी की क्या हैसियत उस वक्त, राम तो कभी राजा महाराजा थे ही नहीं, दशरथ थे, तो उनके जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे कौन रावण के अंदर में नौकर, उनमें एक थे दशरथ, एक थे जनक, क्या سمجھ میں آئی نا کیا حیثیت جین شاستری کے حساب سے دونوں کی حیثیت کیا تھی ذرا سمجھو. کسی جوتشی نے راون کو یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری مرتو جنک کی پتری اور رام کے بیٹے کے نمت سے ہوگی. کیا تو ان نے کہہ دیا کہ رام کو دشرت کو جنک کو دونوں کو ہی ختم کر دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہاں یہ شری کرشن کے ساتھ ہوا تھا, وہاں بھی وہ کنس ماما نے یہ کیا تھا, یہاں بھی یہی کام سونپ دیا گیا تھا ان کو. تو یہ لوگ جنگل میں چھپتے بھاگے تھے, جیسا نہیں کہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے لاؤ تمہاری کیا ہمت ہم دیکھتے. کیا ان کا سادھارن سا نوکر آئے گا اور مار کے چلا جائے گا. حیثیت بتا رہا ہوں دونوں کی, کلپنا کرو ساتھ پڑھنا. دونوں چھپتے چھپتے پھر رہے تھے تو دشرتھ کے اور جنک کے موم کے پتلے بنا کر گدی پہ بیٹھا دیے گئے. کیا اور یہ چھپ گئے تو بیڈو مارنے والے آئے ان کے گلا کاٹ کے اور بہتا ہوا خون دیکھ کے چلے گئے. مار ڈالا ہم نے وہاں خبر پہنچ گئی کہ مار ڈالا. اب اس وقت کا تم بھائی کا بات آپ نے دیکھنا کیسے کیسے چھپ کے بھاگتے ہو, یہ آپ یہ کلپنا کرو, اس کا بڑھیا ناٹک لکھو بناؤ. کرنا مت نہیں تو پٹائی ہو جائے گی. لکھ پڑھ رہے تھے انصاف صاحب, سمجھ جائیں نا میرے کہنے کا مطلب. تو اب وہ کیوں وہ ماں باپ چھپتے پھرتے تھے. بھرت چکرورتی جب دگ وجے کو نکلے تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی عمر کیا تھی. وہ تو پڑھا ہے نا آپ نے سب, کیوں لگاؤ انداز سے ہو سکے. دیکھو 84 لاکھ پورب کی آیو رشبھ دیو کی تھی اور 84 لاکھ پورب کی آیو ہی بھرت چکرورتی کی تھی. آپ سمجھیں گے نا, وہ بھرت چکرورتی کا جب رشبھ دیو نے دیکھا لی گی تو بھرت چکرورتی کا بیٹا ماریچ ان کے ساتھ دیکھت ہو گیا تھا. یہ کوئی ارگ کیرتی ان کا پہلا بیٹا نہیں تھا, سمجھ گئے نا. وہ ماریچ تو پہلے پیدا ہو گیا تھا جو اپنے دادا کے ساتھ دیکھا لے گیا تھا. اب اپنے ایسے آج کے حساب سے مانو, موٹا حساب لگاؤ کہ ایک آدمی کی 83 برس کی عمر ہو تو اس کا بیٹا بڑا سب سے بڑا بیٹا پہلی سنتان ادھک سے ادھک کتنے برس کی ہوگی؟ وہ 60 سے 63 ہو سکتی ہے نا. مطلب 20 برس کی عمر میں بچہ ہو جائے تو 63 برس کی عمر ہو سکتی ہے نا اس کی, تو سمجھ لو کہ اس وقت 63,000 برس کے تھے. کیوں کہ جب ان کو 3 خبر ایک ساتھ ملی تھی نا کہ رشبھ دیو کو کیول گیان, رشبھ دیو کو دیکھا لیے 1,000 برس ہو گئے تھے جب, اور چکر رتن کی پراپتی اور پتر رتن کی پراپتی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پہلا بیٹا تھا کیا؟ پہلا بیٹا تو دیکھا لے گیا تھا ان کے ساتھ, سمجھ گیا نا. نہ تو کتنا ماں نمبر ہوگا اس کا. اب اسے جانے دو کہ پھر 83 لاکھ پورب کی آیو میں لیا تھا نا کن نے رشبھ دیو نے, تو بھرت اس وقت کتنے ہوں گے؟ 63 لاکھ پورب کے. بڈھے ہوں گے, جوان ہوں گے, کیسے ہوں گے, اب آپ نرنے کر لینا. جس کی آیو 83 برس ہوتی ہے اس میں 63 برس کا آدمی کو کیسا مانا جاتا ہے؟ کیوں تم کتنے کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے جوان؟ سمجھ گئے. اب بھرت چکرورتی نے 96,000 شادیاں دگ وجے کے ایک سمے کی ہے, پہلے 2-4 ہی ہوں گی. اب سمجھ میں آیا نا, اب کس عمر میں اور ہر راجا کے پاس چڑھائی کری اور اس کا نیم ہے تجھے اپنی لڑکی شادی کرنی پڑے گی. جس میں معلوم 32,000 لڑکیاں مکٹ بدھ راجا تھے تو 32,000 لڑکیاں تو 96,000 میں لڑکیاں ملے چھوں کی تھی. ملے سمجھ لو کون ہوتے ہوں گے, اب کون سی جاتی کے ہوتے ہوں گے جنہیں اس وقت موکش تک نہیں ہوتا. وہ ملیچوں کی کنیائیں تھیں, ان سے چکرورتی کے کوئی سنتان نہیں ہوتی. क्योंकि वो घर में फिर संतान मिलेच्छों की हो जाएगी ना, और उन मिलेच्छ राजाओं की लड़की, हर लड़की, हर राजा की लड़की जो आया, 32,000 मुकुटबद्ध राजा आए, हर एक की लड़की चाहिए, उसके बिना नहीं मैं खत्म। अब कौन देना चाहेगा कि जिसके बेटे दीक्षा ले गए हो, क्यों, और जिसकी इस उम्र में पहुंच गया हो, उसको कोई अपनी कन्या शादी को देना चाहेगा? और इसलिए बड़े को उनको ये कहना पड़ता था कि नहीं मेरे को उनको करूं, मेरे को करना पढ़ना तो मालूम पड़ेगा कैसे क्या है, उसको दृष्टि से देखो तो तुम्हें, उस दृष्टि से आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के स्पष्टीकरण में आत्मख्याति का अनुसरण करते हुए भी यह जोड़ देते हैं क्या कि सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हुए भी उनमें हे बुद्धि रखता है। अब हे बुद्धि तो उसकी है ही ना, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में तो नक्की हो ही गया ना कि भोगों में सुख नहीं है, और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि रखता है। भोग के काल में उदयगत कर्म को दोनों के ही खिरते हैं, किंतु ये तो अपन पढ़ लिया ना पूरा अच्छी तरह शर्म, उपादेय हे बुद्धि का क्या अर्थ है इन दोनों को पढ़े। जिस प्रकार कोई चोर यद्यपि मरना चाहता, ये जैसे नहीं का उदाहरण है, मेरा नहीं है, देखो, जिस प्रकार कोई चोर यद्यपि मरना नहीं चाहता तथापि कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाने पर मरण दुख का अनुभव करता है, मरण दुख का इसको भी अनुभव बोलते हैं, अकेले वो आत्मा का अनुभव ही अनुभव नहीं है, मेरा ना अनुभव करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि यद्यपि आत्मोत्थ सुख को ही उपादेय मानते हैं और विषय सुख को हे जानते हैं तथापि चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने पर उन भोगों को भोगते हैं, अनुभवते हैं, इस कारण उनका भोग भी निर्जरा का निमित्त है। ये जैसे नहीं लिखा है, आखिर तो भोग ही को सिद्ध किया ना, निमित्त निर्जरा का निमित्त, निमित्त उपादान तो हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण देखो, देखो निर्जरा तीन प्रकार की है, कर्म का खिर जाना द्रव्य निर्जरा है, अशुद्धता का नाश होना नास्ति से भाव निर्जरा है, और शुद्धता की वृद्धि होना अस्ति से भाव निर्जरा है। इनमें द्रव्य निर्जरा की बात तो 193 में गाथा में आ गई। अब ये बताओ गुरुदेव ने कितनी बारीकी से इस बात को पकड़ी थी, ये बात के लिए पढ़ रहा हूं मैं, और अब अशुद्धता के अभाव रूप निर्जरा की बात इस गाथा में कहते हैं कि अशुद्धता का अभाव हो जाएगा इसलिए भाव निर्जरा हुई बता रहे वो, भाव निर्जरा हुई माने क्या, वो अशुद्धि कम हो गई है ना। यहां कहते हैं कि राग की रुचि का परिणमन विद्यमान होने से अज्ञानी जीव को उदय में आया कर्म खिर जाने पर भी वह नवीन कर्म बंधन में निमित्त होता है, बस इसी कारण अज्ञानी के निजरा नहीं है बल्कि बंद होता है, परंतु सम्यक दृष्टि को रागादि भावों के अभाव से बंद का निमित्त हुए बिना केवल खिर जाने के कारण उसे निजरा ही होती है। देखो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में सुख बुद्धि होने से धर्मी जीवों के रागादि का अभाव होता है और उस राग में रुचि नहीं रहती है, इस कारण पुराना कर्म उदय में आकर खिर जाता है, नया नहीं बनता है। ये गंभीरता से पढ़ना, अभी तो मैं यहीं समाप्त करता हूं, घर पे पूरा शुरू से पढ़ना, जिन्हें मैंने पढ़ लिया वो छोड़ना नहीं, और अंत तक पढ़ना, तो फिर कल मैं बिना पढ़े ही आपको जो कुछ दो पांच मिनट में समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, देखूंगा कि समझ पढ़ के आए हो, कुछ समझ में आ रहा है तो बढ़ूंगा, नहीं तो फिर पढ़ूंगा और क्या करूंगा। देखो समय सार बहुत गंभीरता से पढ़ने की चीज है, और इसमें एक बात ध्यान रखना, अपन ने जो एक कहानी लिखी ना, विनय और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं भूतबलि पुरुषदंत ने, लेकिन बुद्धि भी गिरवी नहीं रखी। और धर्मसेनाचार्य ने क्या कहा था, मुझे ऐसे ही शिष्य चाहिए कि जो गुरु के बोझ से इतने न दब जाए उपकार के बोझ से कि नया सोच ही नहीं सकें, और उनकी विनय मर्यादा में भी कोई कमी नहीं आए, मुझे ऐसे ऐसे चाहिए थे और मैंने इसी की परीक्षा की थी। इसलिए जानबूझकर मंत्र छोटे बड़े कर दिए थे। ख्याल में आया ना कि मेरे से पूछे बिना तुम सुधारने की ताकत रखते हो कि नहीं, क्यों मैं तो कल मर जाऊंगा, पूछने को नहीं रहूंगा, फिर तुम क्या करोगे। ख्याल में आई ना। और इसलिए कि मैं तो देखो मैंने गुरु जी का भी सुधार दिया, अब मैं मन से भी महान हो गया है ना मैं पहले लिखता था ना, तो पैर पे तो थे नहीं, तो मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है दादा, तो मैं किसी से नकल करवाता था। तो मैंने ये सुना वो लोगों से कहता था लिखा तो मैंने है, लेखक तो मैं हूं, क्यों लिखा तो मैंने है ना, आया समझ ना। और मैं लिखता था तो जो भी मुझे ऐसा शौक अभी भी है कि किसी को पकड़ के बुलाता हूं, आओ शांति जी बैठो, फिर पद होता है तो उनसे पढ़वाता हूं, गद्य होता है तो खुद पढ़ के सुनाता हूं, उनसे कहता हूं तुम पढ़ो, फिर बोलता हूं कोई इसमें आपको लगता है कोई सजेशन हो तो बताओ। तो ऐसा सहज भाव से करता हूं कभी अपनी चीज शुद्ध हो जाए, और वो मुझे आनंद आता है उसको सुनने में। अब पढ़ पढ़ करके जितना वो नहीं आता इतना शांति से मैं ऐसा आंखें बंद करके बैठ जाता हूं, कैसे पढ़ो सुनता हूं। तो धीरे धीरे उनको भ्रम हो जाता है कि सारे करेक्शन डॉक्टर साहब मैं कराता हूं, सारी उनकी गलतियां तो मैंने सुधारी, नहीं सुधारता तो ना कितनी गलती। एक दफे तो ऐसा हुआ कि मैंने किसी को बुलाता था, फिर वो आना उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं आ, मैं नहीं आ, मना कर दिया, कुछ नहीं बात नहीं करूं, दूसरे को बुलाने लगे, कोई दिक्कत नहीं बड़ी बात। फिर एक तो कोई बात आई तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे पढ़ने को बुलाता था तो तुमने पढ़ने को भी मना कर दिया था, यानी इतने बड़े बन गए तुम। बोले ये आपको पता है कि आप मैंने क्यों मना किया था, मैंने क्यों मना किया था, आप समझेंगे ना। माने वो मुझे से इसकी भी कीमत चाहते थे कि मैं उससे बुलवा के पढ़ता हूं सुनता हूं तो उसके बदले में उसको मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए, देना पैसा नहीं महत्व तो देना चाहिए। कैसी कैसी बुद्धि हो जाती है एक एक क्षण में। तो वो उद्वली भुजनंद की कहानी जो है ना, क्या नाम है उसका, विनय विवेक कैसे कुछ कहानी का नाम है, क्या है, जागृत विवेक, कि विवेक चाहिए जागता हुआ चाहिए, विनय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे वो विवेक रहे, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। एक मिनट में मैं थोड़ा और बाजार सकड़ा नहीं हो जाना चाहिए, यदि सचमुच तुम में क्षमता और योग्यता है तो तुम हो जाओगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। जब तुम वर्क करोगे वो वर्क तुम्हारा सामने आएगा तो दुनिया की कौन ताकत तुम्हें रोक सकती है। समझ में ना, जल्दी की क्या जरूरत है, शांति से अपना काम को करना चाहिए।